पयमे भवान् ध्यायति पयमे बद्धाम् अत्युत्कण्ठः सबलि हृदिवस्मन्विधो बास्तधाराम् स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसी मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गः। अब तात्पर्य में लिखा है, बादल भगवान कृष्ण के मित्र स्वरूप हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, सूर्य की झुलसती किरणों से बादल रक्षा करते हैं। जैसे भगवान भी भगवान के चरण कमल भी शीतलता प्रदान करते हैं संसार के अग्नि में, तो ये बादल भी जो है ना कृष्ण के मित्र स्वरूप हैं, जो सूर्य की गर्मी से रक्षा करते हैं। अतः भगवान के ऐसे सच्चे शुभ चिंतक को उनके कल्याण के बारे में निरंतर ध्यान करना चाहिए। यद्यपि बादल भगवान के नीले वर्ण में साथ देता है, किंतु भगवान कृष्ण के विशिष्ट लक्षण जैसे उनका स्त्रीवत चिन्ह है, बादल के ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। किंतु इसका परिणाम क्या निकलता है, मात्र दुख। बादल हताश होता है और वह वर्षा के बहाने निरंतर आंसू बहाता रहता है। अतः रानियों से सलाह देती हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कृष्ण में इतनी रुचि मत लो, तुम कृष्ण से प्रेम मत करो। कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार से दुख उठाना पड़ता है। इसके बाद कृष्ण की पत्नियां बात करते हैं किससे, कोयल से। हे मधुर कंठ वाली कोयल, तुम मृत को भी जीवित करने वाली वो बोली बोल रही हो जिसे हमने एक बार अत्यंत मधुर भाषी अपने प्रेमी से सुनी थी। मधुर भाषी प्रेमी कौन है, कृष्ण है, बहुत मधुर बोलते हैं। कृपा करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आज क्या करूं। प्रिय राव पदा निभाते मृत संजीवी किया नया गिरा करवाणी के मध्य ते प्रियम वध में वलगत कंठ को खिल। तात्पर्य में लिखा है कि यद्यपि कोयल का गान अत्यंत सुहावना है, किंतु भगवान कृष्ण की पत्नियां से वेदनामय अनुभव करती हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रियतम कृष्ण की याद आ जाती है और उनकी विरह पीड़ा बढ़ जाती है। इसके बाद किससे बात करती हैं, पर्वत से। द्वारका में पर्वत भी हैं। हे उदार पर्वत, तुम ना तो हिलते डुलते हो न बोलते चालते हो, तुम अवश्य ही किसी अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रहे हो, तुम बहुत गंभीर मालूम पड़ रहे हो, पर्वत से बोल रहे हैं। अथवा क्या तुम हमारी तरह अपने स्तनों पर वासुदेव के पांवों को धारण करना चाहते हो। न चलस्य वदस्य उदार बुद्धे चितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि पते वसुदेव नंदनांग्रिम वयमेव कामयसे स्तनैर् विधर्तुम्। अब नदियों से बात करती हैं। क्या कहती हैं, हे समुद्र पत्नी नदियों, अब तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, हाय तुम एकदम दुबली हो गई हो और तुम्हारी कमलों की संपत्ति लुप्त हो गई है, तो क्या तुम हमारी तरह हो जो इसलिए म्लान हो रही हो क्योंकि उन्हें हृदयों को ठगने वाले अपने प्रिय पति मधुपति की स्नेहिल चितवन नहीं मिल रही है। नदियां छेड़ हो गई हैं, उनकी शोभा समाप्त हो गई, कमल सूख गए हैं, तो हमारी तरह अब तुम भी हो गई हो विरहिणी, कृष्ण के विरह में कष्ट भोग रही हो। सुचंद्रदा करसिता बद सिंधु पत्न्यहां संप्रत्य पास्त कमल स्त्री इष्ट भर्तुः यन्वन वयम मधुपते प्रणयावलोकम अप्राप्य मुष्ट हृदया पुरु कर्षितास्म। तात्पर्य में लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में नदियों को अपने पति समुद्र से बादलों के द्वारा वर्षा की झड़ी नहीं मिल पाती, किंतु नदियों के सूखने का असली कारण रानियों के अनुसार यह है कि वे समस्त सुख के आगार भगवान कृष्ण की प्रेम की चितवन पाने में असफल रही हैं। इन नदियों को कृष्ण का संग नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए सूख रही हैं। अब किससे बात करते हैं, हंस। ए बच्चे ये तो बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहां नहीं। हे हंस स्वागत है, कृपया यहां बैठो और थोड़ा दूध पियो। हंस कह रहे हैं, क्यों हंस को बुला रहे हैं दूध पीने के लिए, भी बैठो दूध पियो, क्यों, हमें अपने प्रिय सूरवंशी के कुछ समाचार बतलाओ। सूर्यवंशी कौन? कृष्ण है। हम जानते हैं कि तुम उनके दूत हो, वे अजय प्रभु कुशल से तो हैं, क्या हमारी हमारा वह अविश्वसनीय मित्र अब भी उन शब्दों का स्मरण करता है? कृष्ण ऐसे मित्र हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कृष्ण की पत्नी कहती हैं, ऐसे मित्र हैं जिनका विश्वास नहीं करना चाहिए, ये धोखा देने वाले हैं। तो क्या उनको स्मरण है उन शब्दों का जिन्हें उन्होंने बहुत काल पूर्व कहा था? हम उनके पास क्यों जाएं और उनकी पूजा क्यों करें? हे क्षुद्र स्वामी के सेवक, तुम्हारे स्वामी बड़े नीच हैं, तुम उनके सेवक हो, जाकर उनसे कहो कि वे लक्ष्मी के बिना यहां आकर हमारी इच्छाएं पूरी करें। लक्ष्मी को साथ मत लाएं यहां आकर आए तो। क्या वही एकमात्र स्त्री है जो उनके प्रति अनुरक्त है? क्या केवल लक्ष्मी ही है? हंस स्वागत माशताम पिब पयो ब्रोहंग शौरे कथाम दूतम ताम विदाम कच्चि दजिता स्वस्त्यास्त उक्तम पुराण किं वा न स्थल सौहृद स्मरदितम कस्माद् भजामो वयम् श्रोत्रालापय कामदम श्री मृते सैवैकि निष्ठा स्त्रियां। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक का काफी विस्तार किया है कि जो रानियां हैं हंस के साथ कैसे कैसे बातचीत करती हैं। सुखदेव को समय संक्षेप में बतलाई बातें तो उसको विस्तार से बताते हैं। रानियां पूछती हैं कि अजय प्रभु सकुशल हैं? तो हंस बोलता है, भला अपनी प्रिय पत्नियों के बिना कृष्ण कैसे कुशल हो सकते हैं, तुम्हारे बिना कृष्ण कैसे कुशल हो सकते हैं? तो फिर वो कहती हैं, क्या उन्हें स्मरण है कि उन्होंने एक बार हमसे एक श्रीमती रुक्मिणी से कहा था? क्या उन्हें स्मरण है उन्होंने कहा था सारे महलों में मैं तुम जैसी प्रिया अन्य कोई पत्नी नहीं देखता हूं, तुम्हारे जैसी अन्य पत्नी नहीं देखता हूं। तो हंस कहता है, हाँ उन्हें सब याद है, इसी उन्होंने मुझे यहां भेजा है। हंस कहता है, तुम सब उनके पास जाओ, उनकी भक्ति में लगो। तो वो कहती हैं, यदि वो हमारे साथ रहने के लिए आने से इनकार करते हैं तो हम उनकी पूजा करने के लिए क्यों जाएं? हम क्यों करें उनकी पूजा? किंतु हे दया सिंधु, वे तुम्हारी अनुपस्थिति से अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं, वे इस कष्ट से कैसे बचेंगे? हंस कहता है कि वे तो बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो कहते हैं, हे क्षुद्र स्वामी के सेवक, जरा सुनो तो, उन्हें यहां आने के लिए कहो, क्योंकि उन्हें यहां आना चाहिए। यदि उन्हें कामेच्छा सता रही है तो वे स्वयं दोषी हैं, क्योंकि काम शक्ति वही बनाने वाले हैं। हम आत्मसम्मान रखने वाली महिलाएं उनकी मांग के सामने झुकने वाली नहीं है कि हम उन्हें जाकर के ढूंढें। ऐसा है तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। हम तो कहते हैं, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, जरा एक मिनट, तुम यहां आने के लिए उन्हें कहो, किंतु लक्ष्मी के बिना, क्योंकि वे पूरे समय लक्ष्मी उनको पूरे समय अपने पास रख करके हमें सदैव ठगती हैं। तो हंस कहता है, क्या तुम ये नहीं जानती कि लक्ष्मी देवी एकमात्र भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, ये भला क्यों उनको छोड़ेंगे? तो ये कहती हैं, तो क्या संसार में वही एकमात्र ऐसी स्त्री है जो उसके हाथ बिक चुकी है? हम कहां गए? हमारा फिर क्या है? हम कुछ नहीं है, केवल लक्ष्मी है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, योग के समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण के ऐसे भाव में प्रेम में बोलती और कार्य करते हैं, उनकी प्रिय पत्नियों ने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया है। चरम लक्ष्य प्राप्त किया इसी में दिन रात कृष्ण के माधुर्य में डूबी हुई। इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम। तात्पर्य भी लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी क्रियमाणेन शब्द को वर्तमान काल में सूचित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि भगवान की रानी ने तुरंत ही बिना विलंब उनके नित्य धाम को प्राप्त किया और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिन रात कृष्ण के प्रेम में लीन रहती हैं। इस अंतर्दृष्टि से इस झूठी कल्पना का निराकरण होता है कि इस लोक से कृष्ण के चले जाने पर कुछ आदिवासी ग्वालों ने उनकी पत्नियों का अपहरण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ आदिवासियों ने कृष्ण की पत्नियों का अपहरण किया, लेकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहा जाता है, ये झूठी बातें हैं, ऐसा कहा जाता है जब वे अर्जुन के संरक्षण में थी। वस्तुतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव टीकाकारों ने अन्यत्र व्याख्या की है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही उन चोरों के बीच में प्रकट हुए थे, इसलिए अर्जुन का हाथ नहीं उठ रहा था। अर्जुन सोच रहे क्या हो गया मुझको, मेरा धनुष ही नहीं खींच रहा है, क्या कारण है। और सबसे ज्यादा दुखी अर्जुन थे, अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख अर्जुन को तभी प्राप्त हुआ, कृष्ण के पत्नियों का अपहरण हो रहा है और ये दुष्ट लोग जो आदिवासी हैं वो छीन रहे हैं कृष्ण के पत्नियों को और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा अर्जुन विस्मित थे और दुखी थे। तो वास्तव में कृष्ण ही थे उन चोरों के वेश में प्रकट हुए जिन्होंने रानियों का अपहरण किया। इस विषय में अधिक सूचना के लिए श्रीमद् भागवत 1.15.20 के श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य को देखना चाहिए। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है कि इन भद्र महिलाओं ने जो चरम गति प्राप्त की वह निर्विशेष योगियों की मुक्ति नहीं है अपितु प्रेम भक्ति की पूर्ण दशा। निस्संदेह क्योंकि वे प्रारंभ से दिव्य भगवत प्रेम से ओतप्रोत थीं, अतः उन्हें सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त था। कृष्ण की पत्नियों का शरीर भौतिक नहीं है जिसमें वे भगवान की अंतरंग मधुर लीलाओं के आदान प्रदान का आनंद प्राप्त कर सकती थीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार उनका भगवत प्रेम भावोन्माद में बदल चुका था जिस तरह गोपियों के प्रेम के साथ हुआ था जब कृष्ण उनके रास नृत्य के बीच से ही अदृश्य हो गए थे। तो गोपियों की जो दशा थी वही दशा कृष्ण की पत्नियों की है। उस समय गोपियों ने पूर्ण भावोन्माद का अनुभव किया था जिसको उन्होंने जंगल के विविध जंतुओं से पूछताछ करते हुए इन शब्दों द्वारा कृष्णोहम पश्यद गतिम, मैं कृष्ण हूं देखो ना मैं कितने गौरव से चल रही हूं। इसी तरह भगवान द्वारकाधीश की प्रमुख पत्नियों के प्रेम भाव या विलास ने उन्हें प्रेम वैचित्र के लक्षण उत्पन्न किए जैसे वे यहां प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान जिनका महिमा गान असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से होता है वे उन समस्त स्त्रियों के मनों को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं जो उनके विषय में श्रवण मात्र करती हैं। तो फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करती हैं। श्रुतमात्रोपि या स्त्रीणां प्रसह्या आकर्षते मनः गीतो वा पश्यन्तीनां च किं पुनः। और उन स्त्रियों द्वारा जिन्होंने शुद्ध प्रेम भाव से ब्रह्मांड के गुरु की सेवा की उनके द्वारा संपन्न महान तपस्या का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कृष्ण की पत्नियों को, उनकी तपस्या का कोई वर्णन कर सकता है। उन्हें अपना पति मानकर उन्होंने उनके पांव दबाने जैसी घनिष्ठ सेवाएं की। या संपरितरण प्रेम नाम पाद संवाहना दिभी जगत गुरुम भर्त बुद्धिया आसाम किम वर्णते तपह। इस तरह वेदों द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करते हुए संत भक्तों के लक्ष्य भगवान कृष्ण ने बारंबार प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति घर पर किस तरह धर्म अर्थ और नियमित इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आदर्श गृहस्थ का भगवान व्यवहार कर रहे हैं। एवं वेदोदितम धर्मम अनुतिष्ठम सताम गति गृहम धर्मार्थ कामानाम मुहुर्चा दर्शयत पदम। तो कृष्ण की पत्नियों का जो है ना और कोई कर्तव्य नहीं है, स्त्री होने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि स्त्रियों का आकर्षण पुरुष के प्रति होता है। तो भगवान को देख करके उनका जो स्वाभाविक आकर्षण है वही उनको बंधन से छोड़ा देता है, उन्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जगह जगह उनका वर्णन करते हैं, जहां जहां स्त्रियों की बात आती है तो बहुत गहराई से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। गोपियों का भी भाव है कृष्ण के प्रति तो बहुत ही विस्तार से गहराई से वर्णन है। मथुरा की स्त्रियां भी जब कृष्ण को देखती हैं तो कैसा भाव होता है उनको वो वर्णन करते हैं। जो यज्ञ पत्नियां हैं ब्राह्मणों की पत्नियां हैं ना, तो उनका भी कैसा भाव है, अपने पतियों से बिना आदेश दिए कृष्ण के लिए भोजन देने जाती हैं, उनका कैसा भाव है वो वर्णन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ना ये सौभाग्य है अगर किसी जीव को स्त्री का रूप प्राप्त हो जाए, स्त्री का शरीर प्राप्त हो जाए और वो जो स्वाभाविक आकर्षण है पुरुष के प्रति अगर वो भगवान की तरफ हो जाए बन जाए तो ये जो है कुछ नमूना है जो हमने बताया आपको। अब मैं चाहूंगा कुछ प्रश्न आपकी ओर से, कुछ प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि जब अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लेकर जा रहे थे तो जो आदिवासी हैं वो कृष्ण की पत्नियों का हरण कर रहे हैं, तो हम ये कैसे समझें कि कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया? इसके लिए कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि संभव हो सकता है, क्या संभव हो सकता है? यह संभव नहीं हो सकता है। जैसे रावण ने सीता का हरण किया है ना, तो एक ब्राह्मण बहुत विलाप कर रहा था और बहुत उद्विग्न हो रहा था इस बात को सोच करके। जब चैतन्य महाप्रभु उसके घर में आए तो बड़ा उद्विग्न हुआ कि कैसे हुआ कि रावण ने जो है ना जगन माता सीता का स्पर्श किया, अपहरण किया है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वो छाया सीता थी, वो असली सीता नहीं थी, छाया सीता थी। लेकिन जब उसे प्रमाण नहीं मिल रहा था तो वो बड़ा परेशान था। तो चैतन्य महाप्रभु आगे चल कुछ आगे बढ़े तो कूर्म पुराण की कथा चल रही थी, और कूर्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान राम ने सीता को आदेश दिया कि तुम ना जो है अग्निलोक में जाओ, अग्नि देवता जो है सीता के शरीर से सीता की छाया बनाते हैं और वो राम के साथ रहेगी और रावण उनका अपहरण करेगा। तो वो जो पन्ना है वो चैतन्य महाप्रभु मांग करके लाते हैं और ब्राह्मण को दिखाते हैं, तब उसका जो हृदय शांत हुआ। तो ये निश्चित है कि कृष्ण की पत्नियों का जो ना कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, कोई दूषित हृदय वाला व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है। या तो उनकी छाया है और या फिर वो कृष्ण स्वयं है ना। तो चूंकि अष्टावक्र मुनि का शाप था स्वर्ग की अप्सराओं को, अष्टावक्र मुनि का शाप था कि तुम्हें मेरे जैसे कुरूप व्यक्ति अपहरण करेंगे, क्योंकि वो अष्टावक्र मुनि की कुरूपता को देख करके उनका शरीर टेढ़ा था 8 स्थानों पर, तो हंसी थी उनको देख करके, तो उन्होंने शाप दिया था। तो मुनि का जो शाप है वो तो पूरा होगा, तो जो शाप है वो इसी प्रकार से पूरा हुआ, ठीक है ना। तो यहां तो बताया गया है कि जो आचार्य हैं जो कि माधुर्य रस के ज्ञाता हैं, आचार्य हैं, तो उनके अनुसार ऐसा हुआ। इसमें क्या लिखा है, स्वरूप सिद्ध वैष्णव टीकाकारों ने, स्वरूप सिद्ध वैष्णव टीकाकार। स्वरूप सिद्ध का मतलब जानते हैं कि जो भगवान के जो अंतरंग लीलाएं हैं वो उनको वैसे ही दिखाई पड़ती हैं जैसे कि टीवी में आप जो है बहुत दूर की जो घटना है वो देखते हैं। भगवान के जो है जो नित्य लीलाएं हैं वो अपने हृदय में वैसे ही देखते हैं, तो वो जो ना अधिकारी हैं इन सब बातों को बताने के। तो बहुत सी बातें हैं जो शास्त्रों में अगर ना पता चले या स्पष्ट ना हो तो स्वरूप सिद्ध जो वैष्णव हैं उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप जो है संतुष्ट हो सकें। इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि गीता में भगवान ने समत्व योग का वर्णन किया है, सुख दुख में समान रहना है, मान अपमान में समान रहना है, निंदा स्थिति में समान रहना है। ये समत्व योग जो है ये एक लक्षण है, इसका अभ्यास भी किया जाता है, लेकिन ये स्वाभाविक लक्षण होता है उस व्यक्ति का जो कि भगवान के प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो चुका है, और ये बड़ा स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि उसकी रुचि रहती नहीं है संसार में। कोई भी सुख हो कोई भी दुख हो वो इतना ऊपर उठा हुआ है कि इन चीजों का महत्व नहीं होता है। आप व्यवहारिक रूप में भी आप देख सकते हो कि जैसे बच्चा होता है तो एक कागज के टुकड़े में उसको बड़ी आसक्ति होती है, कोई रंगीन कागज का टुकड़ा है कुछ ना उसकी बड़ी आसक्ति होती है, मिल जाए तो बड़ा खुश होता है और कोई छीन ले तो बड़ा दुखी होता है। लेकिन जब आप हैं इस अवस्था में तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, बच्चे को बड़ा फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपके लिए उन चीजों का महत्व नहीं रहा है ना, तो वो चीजें मिले ना मिले। जैसे टॉफी बच्चे को मिलती है तो बड़ा खुश होता है और ना मिले तो बड़ा शोक करता है, आपके लिए क्या है इन चीजों का महत्व नहीं रहा है ना। चेतना जब विकसित हो जाती है तो जो ज्यादा महत्व की चीजें हैं उनका जब आप महत्व समझने लगते हैं तो कम महत्व की चीजों का महत्व घट जाता है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि ये जगत पूरा क्या है, शून्यायतम जगत सर्वम। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कृष्ण के प्रेम में, क्या है ये पूरा जगत शून्य है, सुना है ना, कुछ भी तो नहीं है। तो कुछ मिल जाए तो भी कोई खुशी नहीं है, कुछ खो जाए तो भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि इन चीजों का महत्व नहीं है। वो राजा के महल में रहता है तो भी उसे कोई इस बात का हर्ष नहीं है कि मैं राजा बन गया हूं। और वो भिखारी की बन करके रहता है, जंगल में रहता है और रूखा सूखा खाता है तो भी उसे कोई शोक नहीं है, क्योंकि वो ऊंची चेतना में ऊंचे प्रकार का सुख प्राप्त करता है। तो उसकी जो ना जो जो आकांक्षा है या शोक है वो दूसरे प्रकार का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है हर्ष और शोक ये नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई जड़ वस्तु की तरह नहीं हो जाता है कि बिल्कुल जड़ हो गया कि उसको हर्ष और शोक या इच्छाएं होती नहीं, इच्छाएं बदल जाती हैं। आप समझे ना, एक शराबी है उसको शराब की इच्छा होती है तो उसको 10 करोड़ रुपए भी वो फेंक देगा, मुझे शराब की बोतल चाहिए बस। तो उसी प्रकार से जिसकी चेतना जो है जब बदल जाती है कृष्ण के प्रेम में तो उसको ही मतलब भौतिक दृष्टि से फिर पागल कहा जाता है, कि वो पागल है, उसको जो ना इन चीजों की कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है कुछ मिले, लेकिन फिर भी वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है और इन चीजों का जो है ध्यान रखता है, देखभाल करता है हर चीज की, लेकिन उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है। एक उदाहरण और भी लिया जा सकता है कि जैसे किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो कंपनी के फायदे के लिए वो हर प्रकार का काम करता है, और कोशिश करता है कंपनी का जितना देखो फायदा हो, लेकिन फायदा जितना भी हो या ना भी हो उससे फिर इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके काम में कितना सफलता मिली है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगाता है, अपनी पूरी बुद्धि लगाता है कि कंपनी का फायदा हो, इन कंपनी का अगर घाटा होता है तो भी उसकी तो अपनी तनख्वाह है, निश्चित है कि नहीं। तो ऐसे कंपनी के प्रति जो वफादार व्यक्ति होता है तो वो कंपनी के फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन तो अभी उसको जो ना इस बात की चिंता नहीं होती है कि कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा। कुछ चिंता करता है, यह इतना फायदा होना चाहिए या इतना फायदा नहीं हुआ तो इसको इस बात का थोड़ा दुख होता है, लेकिन बहुत दुख नहीं होता है कि उद्विग्न हो जाए, दुखे से अनुद्विग्न मना सुखे सुविगत प्रयाण, तो उद्विग्न नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है कि उसको दुख नहीं होता है, लेकिन वो जो है भगवान की सेवा के लिए वो जो है दुखी होता है अगर वो नहीं कर पा रहा है या भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है तो वो दुखी होता है इस बात के लिए, लेकिन वो उन चीजों में आसक्त नहीं है, वो तो भगवान की प्रसन्नता में आसक्त है। फिर भगवान की कितनी प्रसन्नता हो रही है इसमें वो है। इस प्रकार से उसके जो हर्ष और शोक हैं ये बदल जाते हैं, ये नहीं है कि उसको चिंता नहीं होती है और शोक नहीं करता है। माता यशोदा शोक करती है, माता यशोदा चिंता करती है कृष्ण के लिए, तो बहुत ऊंची स्थिति है। ये सब आध्यात्मिक चिंता है, आध्यात्मिक शोक है। माधवेंद्र कोई जब शोक कर रहे थे कृष्ण के दर्शन ना मिलने के कारण, माधवेंद्र कोई शोक कर रहे थे तो रामचंद्रपुरी समझाने लगे उनको, माधवेंद्रपुरी को, कि आप जो है ना इतने ऊंचे धरातल पर हैं तो आपको तो शोक नहीं करना चाहिए, आपको कोई शोक और आकांक्षा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षति ब्रह्मभूत है। तो ये तो बहुत ही निम्न स्थिति है कृष्ण प्रेम की तुलना में। और यहां तो प्रसन्न आत्मा का मतलब यही है कि वो भौतिक चीजों के लिए शोक नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है, लेकिन माधवेन्द्रपुरी तो शोक कर रहे थे किसके लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा इसलिए शोक कर रहे थे। तो माधवेन्द्रपुरी ने क्या कहा कि मेरी आंखों से दूर जाओ, अगर तुम्हारा मुंह देख करके मैं मरूंगा तो नरक में जाऊंगा। रामचंद्रपुरी का त्याग कर दिया माधवेन्द्रपुरी ने। और ईश्वरपुरी जो है, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, वो भी उनके शिष्य थे माधवेन्द्रपुरी के, है ना। तो वो जो है उनसे सहानुभूति प्रकट करते थे माधवेन्द्रपुरी से, और कृष्ण की जो है चर्चा सुनाते थे जिससे कि माधवेन्द्रपुरी का शोक कम होता था। कृष्ण कथा सुनाते थे, उनका मलमूत्र साफ करते थे। तो इस तरह से माधवेन्द्रपुरी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तुम्हारे जैसा ही शिष्य प्राप्त होगा, मतलब जैसे तुम अपने गुरु के प्रति आदर की भावना, सहानुभूति की भावना रखते हो, वैसे तुमको भी ऐसा शिष्य प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने ईश्वरपुरी के, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर मामले में वो समता होती है, हर व्यक्ति किसी मामले में उसकी समता होती है और किसी मामले में विषमता होती है। एक बच्चा है तो कुछ मामलों में वो भी उसकी भी समता है, चाहे उसको 10 का नोट दो चाहे 100 का नोट दो, उसे बराबर है, तो उसकी भी समता है, वो अज्ञान है। और बल्कि कोई और रंगीन कागज होता है तो उसमें उसको ज्यादा आसक्ति होती है, 100 के नोट से ज्यादा उसकी आसक्ति किसी रंगीन कागज में है। लेकिन हर व्यक्ति की आकांक्षा जो है मतलब होती है, अगर इच्छा ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, इच्छा होनी चाहिए। जो शून्यवादी हैं वो हर चीज को शून्य बनाना चाहते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब शून्य बना देना चाहते हैं शून्यवादी। इन जो वैष्णव हैं वो इन सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक संसार क्योंकि उनके लिए बहुत तुच्छ है, इसलिए इन संसार की इन चीजों में जो ना, जैसे कि कांच के टुकड़े हैं, है ना, इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो जो धन संपत्ति और जो इंद्रिय सुख है तो ये उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, इसलिए उसमें जो है ना उसका कोई राग नहीं है, कोई राग नहीं है, कामना नहीं है, इसलिए क्रोध भी नहीं है। उनमें क्रोध होता है, दूसरे प्रकार का क्रोध होता है। जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी काम और क्रोध होता है, वो दूसरे प्रकार का होता है। उस काम को दिव्य काम बोलते हैं या प्रेम बोलते हैं, मोह बोलते हैं, वो आध्यात्मिक मोह है। कृष्ण को मोहन कहा जाता है, तो कृष्ण मोहित करते हैं। तो ये सब जो मोह है, काम है, क्रोध है, ये सब जो है भक्तों में होते हैं। गोपियां अक्रूर से क्रोध होती हैं, तो वे भी किसी को शत्रु बनाते हैं और मित्र बनाते हैं। जो भक्त हैं वो भी किसी को शत्रु किसी को मित्र बनाते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नहीं बनाते हैं। कृष्ण पर केंद्रित जो है उनके भी शत्रु मित्र होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में सहायक है वो मित्र है, मित्र है। जो कृष्ण की भक्ति में बाधक है वो शत्रु है। तो ऐसी बात नहीं कि त्याग नहीं करते हैं, त्याग करते हैं और जो है क्रोध होते हैं। भरत जी क्रोध थे अपनी माता कह गई पर, तो ये राम के प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था थी, भरत जी माता की निंदा करते हैं, कैकेयी की निंदा करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो है निंदा ना करे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब आप निंदा नहीं करते, विरोध नहीं करते, तो आपको भी अपराध लगता है। आप अगर गुस्सा नहीं होते हैं और निंदा नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, तो आपको भी अपराध लगता है। तो ये हम लोग शून्यवादी नहीं है कि हर चीज शून्य बना दो। रावण ने अगर निंदनीय कार्य किया है तो रावण पर क्रोध आता है, भक्तों को रावण की निंदा करते हैं, कंस की निंदा करते हैं, दुर्योधन की निंदा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो निंदा नहीं करते। कहां समता, कैसे समता हो सकती है? भक्त और अभक्त में क्या समता हो सकती है कि आप भक्त और अभक्त को सबको समान समझो, बराबर है? नहीं हो सकता। अगर आप समान समझते फिर आप भक्त कैसे बन सकते हैं? अगर भक्त में अभक्त में आप अंतर नहीं देखते हैं, और गीता में भगवान ने देवासुर संपद विभाग योग नाम का एक पूरा अध्याय 16वां अध्याय बोला है, जिसमें कि विभाजन किया है, अंतर बताया है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में, भगवान ने बताया ना। तो ये चीज जो है हमें देखना है। गीता की दृष्टि से आपका प्रश्न, उनका प्रश्न है कि जो कृष्ण की पत्नियां हैं वो लक्ष्मी जी से जो है कुछ शिकायत करते हैं, लक्ष्मी जी के बारे में शिकायत करते हैं कि वो हमें ठगती हैं और कृष्ण को अपने साथ रखती हैं। हाँ, तो ये स्वाभाविक है, और कृष्ण पर केंद्रित है। मतलब केवल यही है कि जो भक्ति है उसमें भी जो है सब कुछ होता है, आप समझे ना, मित्रता शत्रुता सब होती है, लेकिन कृष्ण पर केंद्रित होती है, यहां कृष्ण को केंद्र बनाया हुआ है, आप समझे ना। और कृष्ण के लिए आनंददायक है। राधा रानी भी जब झगड़ा करती हैं दूसरी गोपियों से, तो कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है।